अच्छा भाई देखिए आगे सबक। इअलम अन्ना शेख रहिमहुल्लाह तआला लम युसद्दिर रिसालतहु हादिही बिहम्दिल्लाह सुबहानहु बि अन जअलहु जुज़अम मिन्हा हस्मन लिनफ्सिही بتخيل أن كتابه هذا من حيث إنه كتابه ليس ككتب السلف رحمهم الله تعالى حتى يصدر به على سننها ولا يلزم من ذلك عدم الابتداء به مطلقا حتى يكون بتركه أقطع لجواز إتيانه بالحمد من غير أن يجعله جزءا من كتابه। अच्छा भाई ये शरह जामी जो है ये शरह है काफिया की, काफिया मतन है और शरह जामी उसकी शरह है। और इन्होंने आपको बतलाया था गुज़श्ता सबक में कि इस शरह जामी का असल नाम फवाइदे ज़ियाइया है और ये मुसन्निफ रहिमहुल्ला ने अपने बेटे ज़ियाउद्दीन यूसुफ के लिए लिखी। भाई मुसन्निफ रहिमहुल्ला के बाकी बेटे जो थे वो बचपन ही में फौत हो गए थे जबकि ये एक बेटा जिंदा रहा और यकीनन ये एक बेटा था बहुत महबूब होगा अपने वालिद को और वालिद ने भी इनकी तरबियत पर खास तवज्जो दी होगी, खास मेहनत की होगी, यहां तक कि उनके लिए शरह जामी जैसी अजीम किताब उन्होंने लिखी ताकि ये अच्छे तरीके से काफिया को नहव को समझ सके। भाई अब आगे मतन शुरू हो रहा है और आपने पढ़ा था काफिया का आगाज किस तरह होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल-कलिमतु लफ्ज़ुन वुज़िअ लिमअना मुफ़रदिन, कि कलिमा ऐसा लफ्ज है जिसको मुफ़रद माना के लिए वज़ा किया गया हो। तो गोया बिस्मिल्लाह के बाद साहिब काफिया जो है अल्हम्दुलिल्लाह के बजाय उन्होंने कलिमा की तारीफ शुरू कर दी। हालांकि हमारे बुजुर्गों का तरीका क्या है कि वो बिस्मिल्लाह के बाद अपनी किताब के आगाज में अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र करते हैं भाई और उसके बाद फिर बाकी बातें जिक्र करते हैं। तो साहिब काफिया पर यहां एतराज हुआ कि इन्होंने बिस्मिल्लाह के बाद अल्हम्दुलिल्लाह को क्यों जिक्र नहीं किया, क्यों बुजुर्गों के तरीके को छोड़ दिया। तो आगे अब उसका जवाब देने लगे हैं तो फरमाते हैं ए आलम अन्न शेख रहिमहुल्लाह ताला। याद रखिए जो ए आलम है इसके जरिए उलमा उमूमन किसी सवाल का जवाब देते हैं, किसी सवाल का जवाब इसके जरिए जिक्र किया जाता है या किसी चीज की तहकीक जिक्र की जाती है भाई, कोई कीमती फायदा जिक्र किया जाता है। तो यहां इलम लेकर आए इसी सवाल मुकद्दर का जवाब देने के लिए। बिस्मिल्लाह के बाद आगे साहिब काफिया की किताब शुरू हो रही है अलकलिमतु लफ्ज, तो यहां पर एतराज होता है कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह को क्यों छोड़ दिया। तो उस सवाल का, उस एतराज का अब ये जवाब देने लगे हैं। कहते हैं इलम तू जान ले अन्न शेख रहिमहुल्लाह तआला, कि शेख रहिमहुल्लाह ने, शेख से मुराद अल्लामा इब्ने हाजिब हैं भाई। मैंने बताया था शेख जो है साहिब फजलो कमाल शख्सियत को कहा जाता है भाई, बूढ़े शख्स को भी कहते हैं लेकिन यहां साहिब फजलो कमाल शख्सियत मुराद है। इअलम तू जान ले अन्न शेख रहिमहुल्लाह ताला, कि शेख रहमहुल्ला ने लम युसद्दिर रिसालतहु हाजही, सद्दर युसद्दिर तस्दीर का माना है शुरू करना, आगाज करना, कि अल्लामा इब्ने हाजिब रहमहुल्ला ने लम युसद्दिर रिसालतहु हाजही, उन्होंने अपने इस रिसाले का आगाज नहीं किया, बिहम्दिल्लाह सुबहानहु, अल्लाह सुबहानहु की हम्द के साथ, अल्लाह सुबहानहू की हम्द के साथ अपने इस रिसाले का आगाज नहीं किया। देखो क्या कहा, लम युसद्दिर रिसालतहू हाजी ही, अपने इस रिसाले का आगाज नहीं किया, अपने
इस रिसाले
का। काफिया दरअसल मैंने बताया छोटी सी किताब है भाई, ये तो आपके पास जो नुस्खा होता है उसमें खूब मोटा मोटा लिखा होता है भाई, एक सतर में ज्यादा से ज्यादा चार या पांच लफ्ज वो लिखते हैं और फिर एक सफे पर छह सात आठ सतरें होती हैं भाई और फिर बाकी हाशिया वगैरह होता है। तो अगर इसको बारीक खत के साथ लिखा जाए तो शायद 10, 15, 20 या 30 सफे बन जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं। तो एक छोटा सा मुख्तसर सा रिसाला है। तो इसीलिए कहा लम युसद्दिर रिसालतहु हादिही, देखा रिसाला कहा क्योंकि यह चंद सफात पर मुश्तमिल है, कि अल्लामा इब्ने हाजिब ने अपने इस रिसाले का आगाज नहीं किया अल्लाह की हम्द के साथ, इस रिसाले का, रिसालतहु हाजिही, देखा इशारा कर दिया, क्योंकि अल्लामा इब्ने हाजिब की और जो तसानीफ हैं उन सब में उन्होंने बिस्मिल्लाह के बाद किसको जिक्र किया है, अल्हम्दुलिल्लाह को जिक्र किया है, लेकिन इसमें जिक्र नहीं किया। पहले एतराज जवाब समझ लें भाई, एतराज क्या हुआ कि उन्होंने बिस्मिल्लाह के बाद अल्हम्दुलिल्लाह को क्यों जिक्र नहीं किया, क्यों सलफ सालेहीन का बुजुर्गों के तरीके को क्यों इन्होंने छोड़ दिया? तो जवाब देंगे कि कसरे नफसी के तौर पर, यानी आजजी के तौर पर, अल्लामा इब्ने हाजिब जो हैं उन्होंने आजजी के तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह को जिक्र नहीं किया कि मेरी ये किताब, ये तो एक छोटा सा मामूली सा रिसाला है, कहां बुजुर्गों की किताबें कि वह उनमें से हर एक अजीम किताब है, और कहां मेरा ये एक छोटा सा रिसाला, तो मेरी ये किताब उन जैसी नहीं कि मैं उन्हीं के तरीके को अपनाऊं, मेरी किताब उनकी किताब जैसी नहीं है, तो बतौर आजजी के उनके तरीके पर नहीं चले कि ये मेरी किताब उन जैसी, उनकी किताबों की तरह नहीं है। भाई जवाब समझ में आ गया? तो कहते हैं इअलम अन्न शेख रहिमहुल्लाह तआला लम युसद्दिर रिसालतहु हादिही बिहम्दिल्लाह सुभानहु, तो जान ले के अल्लामा इब्ने हाजिब रहमतुल्लाह ने अपने इस रिसाले को अल्हम्दुलिल्लाह के साथ इसका आगाज नहीं किया, बी अन जअलहु जुज़अम मिनहा, बी अन बा तस्वीरिया है, बाई सूरत कि वो इस अल्हम्दुलिल्लाह को इस रिसाले का जुज बनाते, बातस्वीरिया है जिसमें सूरत बतलाई जाती है एक चीज की, अपनी इस किताब अपने इस रिसाले को अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू नहीं किया, बाई सूरत के क्या करते, अल्हम्दुलिल्लाह को इसका जुज बनाते, क्या बनाते, जुज बनाते, बी अन जअलहू जुज अम मिनहा, बाई सूरत के वो बनाते, जअलहू जअलहू की हाजमीर ये हम्द को राजे है कि वो अल्लाह की हम्द को बनाते, जुज अम मिनहा, मिनहा की जमीर राजे है रिसाला को, इस रिसाले का जुज, बाई सूरत के वो अल्हम्दुलिल्लाह को इस रिसाले का जुज बनाते, हसमन ली नफसी ही, हसमा यहसिमु का माना होता है तोड़ना, किसी चीज को तोड़ना, हस मन ली नफसी ही, अपने नफ्स को तोड़ते हुए, अपने नफ्स को तोड़ते हुए, यह है लफ्जी तर्जमा। उर्दू में इसको कहते हैं कसरे नफसी, कसरे नफसी, कसर काफ सीन रा, कसर का माना भी है तोड़ना, कसरे नफसी यानी आजजी करना, हस मन ली नफसी ही का माना क्या, कसरे नफसी, और कसरे नफसी का माना क्या, आजजी, तो ये आजजी करते हुए, कहते हैं हसमन ली नफसी ही, आजजी करते हुए, कसरे नफसी करते हुए। देखा हसमन मनसूब है भाई, मनसूब, और ये मफूल लहू बन रहा है, मफूल लहू किसे कहते हैं, जो माकबल फेल की इल्लत बयान करे, जरब तुहु तादीबन, मैंने उसकी पिटाई की, तादीबन अदब सिखाने के लिए, ये तादीबन क्या है, ये मसदर है, मनसूब है, और यह माकबल की इल्लत बयान कर रहा है कि मैंने उसकी पिटाई किस लिए की, मकसद क्या था, अदब सिखाना। यहां पर भी अपने रिसाले को अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू नहीं फरमाया, वजह क्या थी, हस मन ली नफसी ही, कसरे नफसी के लिए, बितखयीली, खयला युखयलु, तखयील का माना है दूसरे के ख्याल में एक बात डालना, बितखयीली ये ख्याल डालते हुए, यानी तुलबा और पढ़ने वालों के जहन में ये ख्याल डालना चाहते थे, ये तसव्वुर डालना चाहते थे कि अन्न किताबहु हाजा, कि उनकी ये किताब जो है अल्लामा इब्ने हाजिब की ये किताब जो है, मिन हैसु, इस हैसियत से, मिन हैसु इन्नहु किताबहु, इस हैसियत से कि यह उनकी किताब है, इस हैसियत से कि यह उनकी किताब है, लैसा का कुतुब सलफी रहिमहुमुल्लाह ताला, ये सलफ सालेहीन, सलफ पिछले गुजरे हुए लोग, मुराद बुजुर्गान दीन हैं, बड़े उलमा हैं, कि उनकी ये किताब सलफ सालेहीन रहिमहुमुल्लाह की किताबों की तरह नहीं है, उनकी किताबों की तरह यह किताब नहीं है। वो तो बड़े लोग थे, उनकी किताबें भी बड़ी अजीमुशान थीं, मेरी किताब उन जैसी नहीं है, मेरी ये किताब उन जैसी नहीं है। हत्ता युसद्दिर बिही अला सननिहा, यहां तक कि इसको भी शुरू फरमाते अला सननिहा। सनन सीन और नून दोनों पर फतहा है, सनन, सनन का माना होता है तरीका, तरीका। यह हत्ता युसद्दिर बिही अला सननिहा, यहां तक कि इसको शुरू फरमाते बुजुर्गों के तरीके पर, कि उनकी यह किताब बुजुर्गों की किताबों की तरह नहीं है। हत्ता युसद्दिर बिही अला सननिहा, यहां तक कि वो शुरू फरमाते इस किताब को अला सननिहा, बुजुर्गों की किताबों के तरीके पर। मेरी किताब उन जैसी है ही नहीं, तो मैं कैसे उनके तरीके पर शुरू कर लूं इस किताब को? भाई माना समझ में आया? तो तखयील का क्या माना? दूसरे के ख्याल में एक बात डालना, दूसरों के तसव्वुर में एक बात डालना। यानी अल्लामा इब्ने हाजिब ने काफिया के शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह को जिक्र नहीं किया, वो पढ़ने वालों के जहन में, तलबा के जहन में ये बात डालना चाहते थे कि मेरी ये किताब बुजुर्गों की किताबों जैसी नहीं है कि मैं भी उनके तरीके पर शुरू करता, उनकी तरह है ही नहीं कि मैं उनके तरीके पर शुरू करता, ये तो एक आम सी किताब है। लेकिन वो अलग बात है, ये किताब बहुत अजीमुशान है, और इंदल्लाह इसकी कबूलियत का जरा अंदाजा तो लगाओ भाई। सैकड़ों साल गुजर गए और ये शब और रोज तलबा उलमा इसके पढ़ने में, इसके पढ़ाने में मसरूफ हैं भाई। मदारिस दीनिया के अंदर ये पढ़ाई जाती है, तो अल्लाह के नजदीक ये किताब कितनी मकबूल है, और नीज इस किताब की शान कितनी ऊंची है भाई। सैकड़ों साल गुजर गए, कोई किताब इसके पाए की नहीं आ सकी भाई। समझ में आया? इसी को उलमा पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और भी बड़ी बड़ी कीमती किताबें आईं, लेकिन बहरहाल काफिया काफिया ही है भाई। आज भी उलमा इससे, तलबा इससे बड़ी मोहब्बत से पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। तो देखो ये किताब तो बड़ी आजीमुशान है, साहिब काफिया ने तो क्या ख्याल किया कि ये मेरी किताब उनकी किताब जैसी नहीं। हालांकि फी जाती ही ये किताब तो बुजुर्गों की किताबों से भी बढ़कर है, बुजुर्गों की किताबों से भी बढ़कर है। इसीलिए मातिन ने क्या कहा, अन्न किताबहू हाजा, कि उनकी ये किताब मिन हैसु इन्नहू किताबहू, इस हैसियत से कि ये उनकी किताब है। तवज्जो से सुनो, फी जाती ही तो यह किताब बड़ी अजीम है अपनी जात के एतबार से, लेकिन बई एतबार के अल्लामा इब्ने हाजी फरमा रहे हैं ये मेरी किताब है, बई लिहाज ये मेरी किताब है, ये मामूली किताब है भाई। अगर चफी जाती ही किताब क्या है, बड़ी आजीम। आजजी कर रहे हैं ना कि बई लिहाज ये किसकी किताब है, मेरी किताब है, और मेरा मकाम बुजुर्गों जैसा है आजजी के तौर पर नहीं, मैं तो एक मामूली सा इंसान हूं। अगरचे अल्लाह ने उनको बड़ा ऊंचा मकाम नसीब फरमाया था, इल्मी एतबार से भी, तकवा के एतबार से भी, लेकिन आजजी के तौर पर कि भाई ये मेरी किताब है, जब मेरी किताब है तो इस हैसियत से ये बुजुर्गों की किताबों जैसी नहीं। समझ में आया? वरना फी जाती ही किताब क्या है, अपनी जात के एतबार से बुजुर्गों की किताबों से बढ़कर है या उन्हीं जैसी है कम अज कम। बात समझ में आ गई? इसीलिए कहा ये ख्याल में डालते हुए, अन्न किताबहू हाजा मिन हैसु इन्नहू किताबहू, इस हैसियत से कि ये इनकी किताब है, अल्लामा इब्ने हाज इस हैसियत से ये बुजुर्गों की किताबों जैसी नहीं है, कि मेरी किताब है ये उन जैसी कैसे हो सकती है, मैं कहां और हमारे बुजुर्ग कहां भाई। फिर यहां एक और बात याद रखना, ये हैसु के बाद इन्ना पढ़ेंगे भाई, क्या पढ़ेंगे, इन्ना पढ़ेंगे, क्योंकि हैसु मुजाफ होता है जुमले की तरफ और जुमले पर इन्ना दाखिल होता है, यानी इन्ना के दाखिल होने के बाद जुमला जुमला ही रहता है, और अन्ना जब जुमले पर आ जाए तो वह मुफरत बन जाता है। मैंने तरकीब के दौरान भी आपको बतलाया था, इन्ना जैदन काइमुन, क्या तर्जमा, बेशक जैद खड़ा है या यकीनन जैद खड़ा है, और अगर मैं कहूं अन्ना जैदन काइमुन, अन्ना जैदन काइमुन, अब क्या तर्जमा होगा, नहीं नहीं, खबर का मस्तर निकालो और उसको अन्ना के इसम की तरफ मुजाफ कर दो, अन्ना जैदन कायमुन, खबर क्या कायमुन और अन्ना का इसम क्या जैद, तो कायम का मस्तर निकालो कियाम और इसकी इजाफत कर दो किसकी तरफ जैद की तरफ, कियामु जैदिन। अन्ना जैदन कायमुन क्या तर्जमा होगा, कियामु जैदिन, जैद का कियाम, बस बात पूरी नहीं है। आप 10 दफा किसी को कहते रहें अन्ना जैदन कायमुन, अन्ना जैदन कायमुन, तो तर्जमा होगा जैद का कियाम, जैद का कियाम, जैद का कियाम, वो कहेगा भाई बात तो पूरी करो, जैद के कियाम को क्या हुआ, अच्छा है बुरा है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बात तो पूरी करें। अन्ना जो है जुमले को मुफरद बना देता है, जुमला फिर जुमला नहीं रहता। तो हैसु जो है ये मुजाफ होता है जुमले की तरफ, और जुमले पर क्या आता है इन्ना, अन्ना आ जाए फिर तो वो क्या बन जाता है मुफरद, तो हैसु के बाद इन्ना पढ़ेंगे। तो हैसु मुजाफ होता है जुमले की तरफ, तवज्जो है, हैसु मुजाफ होता है किसकी तरफ जुमले की तरफ, जबकि बाज़ उलमा फरमाते हैं कि हैसु मुफरद की तरफ भी मुजाफ हो सकता है, तो उनके मजहब पर मीन हैसु अन्ना भी पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं कि मुफरद की तरफ भी मुजाफ हो सकता है और अन्ना भी क्या करता है जुमले को किसके हुक्म में कर देता है मुफरद के हुक्म में, तो हैसु के बाद उनके मजहब पर अन्ना भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन ज्यादा यही बेहतर कि यहां इन ना पढ़ा जाए जी। फिर एक दफा तर्जमा देख लीजिए, इअलम अन्ना शेख रहिमहुल्लाह तआला लम युसद्दिर रिसालतहु हादिही बिहम्दिल्लाह सुबहानहु, तू जान ले कि शेख रहिमहुल्लाह ने अपने इस रिसाले को अल्लाह की हम्द के साथ शुरू नहीं फरमाया, बि अन जअलहु जुज़अम मिन्हा। देखा यह बात तस्वीरिया है, उसके इसके जरिए किसी चीज की सूरत बतलाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह के साथ किताब को शुरू नहीं फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह के साथ किताब को शुरू फरमाते उसकी क्या सूरत थी, बि अन जअलहु जुज़अम मिन्हा, कि अल्हम्दुलिल्लाह को क्या करते इस किताब का जुज बना। तवज्जो है भाई, इधर देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह को किताब का जुज बनाया नहीं, 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 अगर बनाते तो किस तरह बनाते, उसकी सूरत क्या थी, अल्हम्दुलिल्लाह के साथ अल्हम्दुलिल्लाह को किताब का जुज बनाते, यानी उसको शुरू में जिक्र करते, जब शुरू में जिक्र करते तो किताब का जुज बन जाता है या नहीं, तो ये तसूरत बतला रहे हैं बाई सूरत के जालहू जुज अमिनहा, कि क्या करते कि अल्हम्दुलिल्लाह को किताब का जुज बनाते, हसमन ली नफसी ही कसरे नफसी करते हुए, बितखीली ये बात ख्याल में डालते हुए कि अन्न किताबहु हादा मिन हैसु इन्नहु किताबहु, कि उनकी ये किताब इस हैसियत से कि ये उनकी किताब है, लैसा का कुतुबि सलफी रहिमहुमुल्लाह ताला, ये बुजुर्गों की किताबों जैसी नहीं है, हत्ता युसद्दिर बिही अला सननिहा, यहां तक के शुरू करते इसको उन बुजुर्गों की किताबों के तरीके पर। वला यल्जमु मिन जालिका अदमुल इब्तिदाई बिही मुतलकन, यहां एतराज होता है, फिर यह जवाब तो हो गया कि बुजुर्गों की किताबों के तरीके को क्यों छोड़ा आजजी करते हुए कि मेरी किताब उनकी किताब जैसी नहीं, लेकिन फिर भी यह तरीका दुरुस्त नहीं क्योंकि इसमें हदीस की मुखालफत हो गई, क्योंकि इसमें हदीस की मुखालफत हो गई। हदीस में आता है कुल्लु अमरिन रिबालिन लम युबदा फीही बिहम्दिल्लाही फहुवा अक्ता अक्ता अबतर वगैरह अल्फाज आते हैं, कुल्लु अमरिन रिबालिन जीबाल यानी जुबाल, जुबाल बाल का माना है शान, शान बाल दिल को भी कहते हैं और शान को भी, कुल्लु अमरिन जीबालिन हर शान वाला काम जो है, लम युबदा फीही कि उसके अंदर आगाज न किया जाए, बिहम्दिल्लाही अल्लाह की हम्द के साथ, फहुआ अबतर तो वो दुम कटा होता है, वो अधूरा होता है, वो नाकिस होता है। अबतर और अकता का क्या माना, नाकिस और अधूरा। कुल्लु अमरिन दीबानिन लम युबदा फीही बिहम्दिल्लाही फहुआ अकता, हर शान वाला काम जो है उसको अगर अल्हम्दुलिल्लाह के साथ उसका आगाज न किया जाए तो वो अधूरा है, नाकिस है। तो इस हदीस से क्या मालूम हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह को नहीं छोड़ना चाहिए, जिक्र करना चाहिए भाई हर शान वाले काम के आगाज में। तो हर शान वाला काम, इसमें तमाम काम आ गए सवाए वो चीजें जो शरअन नापसंदीदा हैं या मना हैं। जो शरअन नापसंदीदा और मना है भाई, उसके अलावा बाकी मालूम हुआ, चाहे कोई मुस्तहब काम हो चाहे जायज हो वगैरह, सब काम आ गए। हर एक के शुरू में बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी चाहिए भाई। तो साहिब काफिया ने क्या किया, अल्हम्दुलिल्लाह को छोड़ दिया, तो उन्होंने इस हदीस पर अमल नहीं किया। तो आपको बतलाएंगे मुल्ला जामी, अल्हम्दुलिल्लाह लाने की एक सूरत किताबत की है तो एक सूरत जुबान से पढ़ने की भी है। किसी काम के शुरू में क्या कर लिया जाए, अगर जुबान से भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली जाए तो हदीस पर अमल हो जाएगा। और यकीनन साहिब काफिया जो हैं बड़े मुत्तकी इंसान थे, बहुत बड़े आलिम दीन थे। यह नहीं हो सकता कि इन्होंने इसके शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह जुबान से भी न पढ़ी हो। जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पढ़ी होगी, अलबत्ता किताब का जुज नहीं बनाया। और हदीस में यह जिक्र नहीं है कि किताब का जुज बनाना जरूरी है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह का लाना जरूरी है। और लाने की एक सूरत यह भी है कि जुबान से पढ़ ली जाए। और हमें यकीन है कि साहिब काफिया जैसे बड़े आलिम मुत्तकी आलिम ने यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह आगाज में जरूर पढ़ी होगी। बल्कि हमारे बुजुर्गों का तो तरीका यह था कि कोई ऐसी तसनीफ वगैरह करते थे, उससे पहले ही मुद्दत तक अल्लाह से दुआएं करते रहते थे, नवाफिल पढ़ते, रोजे रख रख कर अल्लाह से मांगते कि अल्लाह मैं ये काम शुरू करने वाला हूं, एक ऐसी किताब लिखने वाला हूं, अल्लाह उसको कबूल फरमा, उसको मेरे लिए सदका जारिया फरमा। तो हमारे बुजुर्गों का यह तरीका होता था। तो यकीनन साहिब काफियान भी शबो रोज दुआएं भी मांगते रहे होंगे, शबो रोज इसके लिए नवाफिल भी पढ़ते रहे होंगे। तो यह कैसे मुमकिन है कि उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में जुबान से जिक्र न किया हो। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वला यलजमु मिन जालिका, और इससे यह बात लाजिम नहीं आती, आदमुल इब्तिदाई बिही मुतलकन, के मुतलकन अल्हम्दुलिल्लाह से इब्तिदा न हो। भाई कि अल्हम्दुलिल्लाह को किताब का जुज नहीं बनाया, लेकिन इससे यह लाजिम नहीं आता कि मुतलकन वो शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह लाए ही ना हो, बल्कि कैसे लाए होंगे, जुबान के जरिए उसको अदा किया होगा। तो कहते हैं वला यलजमु मिन जालिका आदमुल इब्तिदाई बिही मुतलकन, और इससे यह लाजिम नहीं आता, क्या लाजिम नहीं आता, आदमुल इब्तिदाई बिही ऐ बिल हमदी, कि मुतलकन अल्हम्दुलिल्लाह के साथ इब्तिदा ना हो, यह इसके साथ लाजिम नहीं आता। हत्ता यकून बितर की ही अक्ता, यहां तक के होता इसको अल्हम्दुलिल्लाह को छोड़ने की वजह से अक्ता अधूरा, यहां तक कि अल्हम्दुलिल्लाह को छोड़ने की वजह से यह काम क्या होता, अधूरा। यानी देखो भाई, कहना यह चाहते हैं, माना समझ लो, कहना यह चाहते हैं, इन्होंने बुजुर्गों के तरीके को तो छोड़ दिया आजजी करते हुए, लेकिन इससे हदीस पर अमल रह गया, और हदीस पर अमल न करने की वजह से उनका यह काम क्या हुआ, अधूरा हुआ, नाकिस हुआ। कहते हैं नहीं नहीं, हदीस में अल्हम्दुलिल्लाह के लाने का जिक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में लाई जाए और उसके कहने की सूरत किताबत के अलावा जुबान से भी अदा करना है। तो अगर किताब का जुज नहीं बनाया तो इससे यह लाजिम नहीं आता कि उन्होंने बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह को शुरू में लाए ही नहीं होंगे और उसकी वजह से यह किताब क्या होगी, अधूरी होगी। नहीं, यह लाजिम नहीं आता। अक्ता का माना कर ले बेबरकत के, भाई बेबरकत, अधूरा, नाकिस होगा और बेबरकत होगा। तो कहते हैं वला यलजमु मिन जालिका आदमुल इब्तिदाई बिही मुतलकन हत्ता यकून बितर्क ही अक्ता, और इसे यह लाजिम नहीं आता कि मुतलकन अल्हम्दुलिल्लाह से आगाज न हो, हत्ता यकून बितर्क ही अक्ता, यहां तक कि इसकी तर्क की वजह से यह अक्ता होता, यानी अधूरा और नाकिस होता, यानी यह किताब अधूरी और नाकिस होती, बेबरकत होती। लिजवाज इतियानी ही बिलहमदी, इसलिए क्योंकि जायज है यानी मुमकिन है इतियानी ही मुसन्निफ का लाना, इतियानी ही कि हाजमीर शेख रहमतुल्लाह मुसन्निफ को राजे, इसलिए क्योंकि मुमकिन है, जवाज का क्या माना, मुमकिन, लिजवाज इतियानी ही, इसलिए क्योंकि मुमकिन है इतियानी ही यानी मुसन्निफ का लाना, इतियान का माना मुसन्निफ का लाना यानी अंजाम देना, सर मुसन्निफ का अंजाम देना। लिजवाज़ इतियानी ही, इसलिए क्योंकि जायज है मुसन्निफ ने अंजाम दिया हो बिल हम्दी हम्द को, मुसन्निफ ने हम्द को अंजाम दिया हो यानी हम्द को अदा किया हो, मिन गैरी अन यजअलहु जुज़अन मिन किताबिही, बगैर इसके कि उसको जुज बनाया हो अपनी किताब का, किताब का जुज बनाए बगैर भी मुमकिन है मुसन्निफ ने अल्हम्दुलिल्लाह को जुबान से अदा किया हो। माना समझ में आ रहा है, लिजवाज़ इतियानिही बिलहम्द मिन गैरि अन यजअलहु जुज़अन मिन किताबिही, इसलिए क्योंकि मुमकिन है कि मुसन्निफ ने अल्लाह की हम्द जो है वो असर अंजाम दी हो, या यूं कहें कि मुसन्निफ ने अल्लाह की हम्द अदा की हो, मिन गैरि अन यजअलहु जुज़अन मिन किताबिही, बगैर उसको किताब का जुज बनाए हुए, किताब का जुज बनाए बगैर ही क्या किया हो, हम्द को अदा किया हो, यह मुमकिन है भाई। वबदअ बितारीफिल कलिमति वल कलामी लि अन्नहु युबहसु फी हादल किताब अन अहवालिहिमा, ये फिर एक सवाल का जवाब दे रहे हैं या एतराज का। एतराज यह होता है कि इल्मे नहव का मौजू कलिमा और कलाम है, इल्मे नहव का मौजू कलिमा और कलाम है, जिस चीज के अहवाल से किसी इलम में बहस की जाए वो इस इलम का मौजू कहलाते हैं। तो लिहाजा जब नहव की किताब शुरू कर रहे हैं तो मुसन्निफ को क्या करना चाहिए, कलीमा और कलाम के अहवाल से बहस करनी चाहिए, लेकिन इन्होंने कलीमा की तारीफ शुरू कर दी। तवज्जो है, मुसन्निफ को क्या करना चाहिए था, कलीमा और कलाम के अहवाल से बहस शुरू करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने अहवाल से बहस करने के बजाय कलीमा की तारीफ शुरू कर दी। भाई भाई इनके अहवाल से बहस करते हमें यह बताते कि कलीमा कभी इसम होता है, कभी फेल होता है, कभी हर्फ होता है, कभी मरफू होता है, कभी मंसूब होता है, कभी मजरूर होता है, कभी फाइल होता है, कभी मफूल होता है, कभी मुब्तदा होता है, कभी खबर होता है, कभी कलाम जो है वो जुमला खबरिया होता है, कभी इंशाइया होता है, कभी वो जुमला शर्तिया होता है वगैरह, ये बातें जिक्र करते कलीमा और कलाम के बारे में, उनके अहवाल से बहस करते, उनके अहवाल हमें बताते, तो ये मुसन्निफ ने शुरू में कलीमा की तारीफ क्यों की। एतराज समझ में आया, क्या एतराज, ये तो इल्मे नहव में किताब है और इल्मे नहव का मौजू क्या है, कलीमा और कलाम, लिहाजा मुसन्निफ को क्या करना चाहिए था, कलीमा और कलाम के अहवाल से बहस करनी चाहिए थी, लेकिन इसके बजाय इन्होंने क्या शुरू कर दिया, कलीमा की तारीफ शुरू कर दी। भाई इश्काल समझ में आया, तो जवाब देंगे, कहते हैं भाई देखिए देखिए, कलीमा और कलाम को जानेंगे और पहचानेंगे तो फिर इनके अहवाल से बहस करेंगे, अगर आपको कलीमा और कलाम की पहचान ही नहीं है तो फिर इनके अहवाल से कैसे बहस करेंगे। लिहाजा उनको पहचानने के लिए, उनकी पहचान करवाने के लिए मुसन्निफ शुरू में कलीमा की तारीफ ले आए। भाई इसी तरह आगे चलकर वो कलाम की भी तारीफ करेंगे। मसलन देखो, मैं मसलन आपसे कहता हूं भाई जैद के कुछ अहवाल बयान करो, जैद के
कुछ
अहवाल बयान करो, अगर आप जैद को जानते होंगे तो कुछ अहवाल बयान करेंगे कि ऐसा तालिब इल्म है, फलां दर्जे में पढ़ता है, बड़ा मेहनती है, बड़ा मंतिकी है, बड़ा नहवी है। भाई अगर आप उसको जानते होंगे तो ये अहवाल आप बहस करेंगे, और अगर आप उसको जानते ही नहीं और मैं कहूं जी अहवाल जैद के अहवाल मैं आपसे पूछूं, या मैं बयान करना शुरू कर दूं कि जैद बड़ा मेहनती आदमी है, बड़ा नहवी है, बड़ा मंतिकी है, तो आप हैरान होकर कहेंगे जैद है कौन, पहले हमें यह तो बता दें। तो लिहाजा किसी चीज के अहवाल से तभी बहस हो सकेगी, तभी सुनने वाला उसको समझेगा जब पहले उस चीज के बारे में तो इलम हो। लिहाजा इसलिए शुरू में क्या किया, कलिमा की तारीफ लेकर आए ताकि उसकी पहचान हो जाए, जब पहचान हो जाएगी उसके बाद फिर आगे उसके अहवाल वगैरह जिक्र करेंगे। भाई तो कहते हैं वह बदा अभी तारीफ इल कलिमती वल कलामी, और मुसन्निफ ने आगाज किया कलिमा और कलाम की तारीफ से, लिअन्नहु युबहसु फी हादल किताब अन अहवालिहिमा, इसलिए क्योंकि इस किताब के अंदर बहस की जाएगी, अन अहवालिहिमा कलिमा और कलाम के अहवाल से, फमता लम युअरफा, तो जब तक इनको पहचाना नहीं जाएगा, फमता लम युअरफा, तो जब तक इनको पहचाना नहीं जाएगा, कैफ युबहसु अन अहवालिहिमा, तो फिर कैसे बहस की जाएगी इनके अहवाल से। तर्जमा समझ में आ रहा है, वकद्दमल कलिमत अलल कलामी, ये फिर एक और सवाल का एतराज का जवाब कि कलीमा और कलाम में से मुसन्निफ ने कलीमा की तारीफ शुरू कर दी, भाई कलाम की तारीफ क्यों नहीं लाई शुरू में? कलाम में तो बात पूरी होती है, कलाम में तो
बात पूरी होती है
और कलीमा तो एक लफ्ज को कहते हैं। मसलन मैंने कहा जैद, जैद कोई बात आपको पता चली
नहीं।
हां मैं कहूं जैद आलिम है, पूरा कलाम ले आया, अब आपको एक नई बात पता चल गई, क्या कि जैद आलिम है। तो कलीमा के बजाय कलाम को शुरू में लाना चाहिए था, क्योंकि कलाम उससे फायदा ताम हासिल होता है, सुनने वाले को एक बात का पता चलता है। वरना मैं आपके सामने 100 कलीमे भी जिक्र कर दूं आपको बात नहीं समझ में आएगी। मसलन मैं कहूं जैद अमर बकर खालिद वगैरह, देखो मैं नाम लेता चला जा रहा हूं, बात पूरी नहीं करता, तो आप कहेंगे भाई बात तो पूरी करें, क्या कहना चाहते हैं आप। और कलाम में मसलन मैं कलाम लेकर आता हूं जैद आलिम है, देखो इससे आपको एक पूरी बात समझ में आ गई कि जैद पर आलिम होने का हुक्म लगाया गया है। तो फायदा किसके अंदर है? कलाम के अंदर। तवज्जो है, फायदा ताम किससे हासिल होता है? कलाम से। लिहाजा पहले किसको लाना चाहिए था? कलाम को लाना चाहिए था, लेकिन मुसन्निफ ने किसको जिक्र कर दिया? कलीमा का। तो जवाब देंगे कि भाई ये जो कलीमा है ये कलाम का जुज होता है, ये कलीमा क्या है? कलाम का जुज होता है, और जुज मिलेंगे तो कुल बनेगा, तो जुज क्या होता है? कुल पर मुकद्दम होता है। तवज्जो है भाई, गाड़ी है, गाड़ी में देखो सैकड़ों पुर्जे हैं, गाड़ी पहले है या ये पुर्जे पहले हैं? पुर्जे, ये पुर्जे जोड़ेंगे तो गाड़ी बनेगी, तो पहले पुर्जे बनाए जाते हैं फिर उनको जोड़कर गाड़ी बनाई जाती है, तो जुज क्या होता है? कुल पर मुकद्दम होता है। तो कलीमा क्या है? कलाम का जुज। और नीज मसलन देखो मैं कहता हूं जैदुन आलिमुन, जैदुन
आलिम,
ये कलाम है, और इसका एक जुज है जैद, ये भी कलीमा है, और दूसरा जुज क्या है? आलिम, वो भी कलीमा है। तो देखो कलीमा कलाम का जुज है, और नीज कलाम का माना क्या है? जैद आलिम है। तो वही जो कलीमों का माना था वो कलाम के माना का भी जुज हो गया, कलाम का माना का भी जुज हो गया। एक है कलीमा, एक है उसका मफहूम, एक है कलाम, एक है उसका मफहूम। मसलन जैद का क्या माना? ये एक शख्स का नाम है। और आलिम का क्या माना? जानने वाला, जानने वाला। और जैद आलिम है, ये एक कलाम है, और एक इसका मफहूम है। जब मैंने ये जुमला बोला तो इसका एक माना आपके जहन में आ गया, वो क्या है? इसका मफहूम। तो कलीमा क्या होता है? कलाम का जुज होता है, और कलीमा का जो माना है वो कलाम के माना का जुज है। तवज्जो है, कलीमा खुद किसका जुज? कलाम का, और कलीमा का माना किसका जुज? कलाम के माना का जुज है। तो इसलिए कलीमा को मुकद्दम किया। कहते हैं वकद्दम अल कलिमत अलल कलामी, और मुकद्दम किया कलीमा को कलाम पर, लिकौनी अफराद इहा जुज अमिन अफराद अल कलामी, इसलिए क्योंकि कलीमा के जो अफराद हैं वो जुज हैं कलाम के अफराद के। कलीमा के जो अफराद हैं वो कलाम के अफराद के जुज हैं। तवज्जो है, क्या माना? भाई देखो मसलन देखो इंसान, इंसान के अफराद कौन हैं? भाई खारिज में जितने इंसान आप देख रहे हैं ये क्या है? इंसान के अफराद, जैद अमर बकर खालिद हैं, आप लोग हैं और लोग हैं, ये सब क्या है? इंसान के अफराद। इसी तरह एक है कलीमा, एक क्या है? इसम भी कलीमा का फर्द, फेल भी कलीमा का फर्द, हर्फ भी कलीमा का फर्द। फिर इसम, हजारों इसम है आप किताबों में पढ़ते हैं, ये सारे क्या है? कलीमा के अफराद हैं। इसी तरह आप हजारों फेल पढ़ते हैं, ये सारे क्या हैं? कलीमा के अफराद हैं। इसी तरह हुरूफ आते हैं अरबी जुबान में, ये सारे भी क्या हैं? कलीमा के अफराद। तो ये जो कलीमा के अफराद हैं ये कलाम के अफराद के जुज हैं। कलाम के अफराद क्या हैं? भाई एक है कलाम, कलाम किसे कहते हैं? मतजम्मन कलिमतैन बिल, वो लफ्ज जो कितने कलिमों से कम मिलकर बने, दो, और उनमें क्या पाया जाए, इसनाद, और उसका माना ताम हो, पूरा हो, उसमें बात पूरी समझ में आ रही हो। अब देखो मैं आपसे कहता हूं जैद आलिम है, ये भी क्या है भाई, जैसे देखो इंसान के अफराद कौन थे, जैद, अमर, बकर वगैरह, इसी तरह कलाम के भी तो अफराद हैं। आप ये जो जितनी मैं तकरीर कर रहा हूं ये सारा क्या है, कलाम है, ये सारे कलाम के अफराद हैं। मसलन मैंने कहा जैद आलिम है, ये भी क्या है, कलाम के अफराद में से। मैंने कहा अमर मेहनती तालिब इलम है, ये भी क्या है, कलाम है, तो ये कलाम के अफराद में से है। मसलन मैं कहता हूं बारिश हो रही है, ये भी क्या है, कलाम है, और ये कलाम के अफराद में से है। तो जो भी आप जुमला बोलेंगे वो कलाम के अफराद में से, वो सब क्या हैं, कलाम है, तो कलाम के अफराद में से। तो ये मैं मफहूम समझा रहा था, इन्होंने क्या कहा, वकद्दम अल कलिमा तअला अल कलामी, और कलिमा को मुकद्दम किया कलाम पर, लिकौनी अफरादिहा जुज अमीन अफरादिल कलामी, इस वजह से कि कलिमा के जो अफराद हैं वो जुज हैं किसके, कलाम के अफराद के, कलिमा के अफराद वो कलाम के अफराद के जुज हैं। कलिमा के अफराद समझ में आ गए, कलाम के अफराद समझ में आ गए, जैद आलिम है, ये क्या है, कलाम के अफराद में से, और कलिमा, जैद और आलिम वो किस में से, वो किसके अफराद में से, फिर सुनो, जैद आलिम है, कलिमा है या कलाम है,
कलाम,
कलाम, यानी ये कलाम के अफराद में से है। सिर्फ यही कलाम है या और भी हैं, और भी हैं, तो ये कलाम के अफराद में से। और इस जुमले में क्या क्या लफ्ज है, जैद आलिम है, तो ये जैद ये क्या है, कलिमा, आलिम ये भी क्या है, कलिमा है, ये भी क्या है, कलिमा, और ये यही कलिमा है या और भी कलिमे हैं, ये और भी हैं, तो ये भी ये किस में से हुआ, कलिमा के अफराद में से। तो देखा जैद आलिम है, ये कलाम के अफराद में से हुआ, और इसके अंदर जो कलिमे आ रहे हैं वो किस में से हैं, वो कलिमे के अफराद में से हैं। तो कलिमे के जो अफराद होते हैं वो कलाम के अफराद का जुज होते हैं। बात समझ में आ गई, लिकौनी अफरादिहा जुज अमीन अफरादिल कलामी, इस वजह से कि कलिमा के जो अफराद हैं वो जुज हैं कलाम के अफराद के। व मफहूमिहा, इसको मफहूमिहा पढ़ना भाई, इसका आतफ है अफरादिहा पर, और अफरादिहा मजरूर है, वो मुजाफिले है कौन के लिए, किसके लिए, लिकौनी अफरादिहा, तो उस अफरादिहा की जगह अब ये मफहूमिहा ले आएंगे। वली कौनी मफहूमी हा जुज अमिन मफहूमी ही, और इस वजह से कि कलिमे का जो मफहूम है वो जुज है किसका, कलाम के मफहूम, एक है कलिमा का मफहूम, एक है कलाम का मफहूम, कलिमा का मफहूम कलाम के मफहूम का जुज है। तो हासिल कलाम क्या, कलिमा को क्यों मुकदम किया, क्योंकि कलिमा के अफराद कलाम के अफराद का जुज, और कलिमा का मफहूम कलाम के मफहूम का जुज है भाई। फकाल, पस मुसन्निफ फरमाते हैं, यानी अल्लामा इब्ने हाजिब, अल कलिमतु, देखो ये मतन है, इसके ऊपर लकीर लगी हुई है और ये काफिया शुरू हो गई भाई। अल कलिमतु कील हिया वल कलामु मुश्तकानी मिनल कलमी बी तस्कीनिल लामी वहुवल जर्हु लितासीरी मानी ही माफी नुफूसी कल जुर्ही। यहां से कलिमा और कलाम की तहकीक कर रहे हैं और आपको बतलाएंगे कि कलिमा और कलाम ये मुश्तक हैं कलमुन से, काफ लाम मीम, काफ लाम मीम, कलिमतुन, इसमें तो लाम के नीचे जेर है, इसी को साकिन कर दो, कलमुन, तो कलमुन से मुश्तक है कलिमा भी और कलाम भी, तवज्जो है, तो कलिमा और कलाम मुश्तक हैं कलमुन से। इधर देखिए भाई, कलिमा और कलाम मुश्तक हैं किस से, कलमुन से, और कलमुन का माना है जख्मी करना, कलमुन का क्या माना, जख्मी करना। तो इस पर इश्काल होता है कि भाई कलिमा और कलाम कलमुन से कैसे मुश्तक हैं, कलमुन का माना है जख्मी करना, और कलिमा किसे कहते हैं, लफ्जों वुजिया लिमाना मुफरदीन, कलिमा ऐसा लफ्ज है जिसको मुफरद माना के लिए वजा किया गया हो, और कलाम किसे कहते हैं, मा तजम्मन कलिमतैन बिल इस्नादी, वो लफ्ज जो मुतजम्मिन हो दो कलिमों को, बिल इस्नादी किसके साथ, इस्नाद भी होना चाहिए फिर ही बात पूरी होगी। तो कलाम कहते हैं मातजमन कलिमतैन बिल इस्नादी, वो लफ्ज जो मुतजमिन हो दो कलिमों को और उसके अंदर उन दोनों में इस्नाद भी हो। तो कलिमा कहते हैं लफ्ज वज़ी अली माना मुफरदीन, और कलाम कहते हैं मातजमन कलिमतैन बिल इस्नाद, और आप कह रही हैं दोनों मुश्तक हैं किस से, कलमुन से, और कलमुन का क्या माना है, जख्मी करना, तो कलमुन हुआ मुश्तक मिनहु, और कलिमा और कलाम क्या हुए मुश्तक, और हमेशा मुश्तक और मुश्तक मिनहु के माना में मुनासिबत होती है, दोनों में क्या होती है, जैसे जारिबुन किससे मुश्तक है, जरबुन से, जरब का माना पिटाई करना और जारिबुन का माना पिटाई करने वाला, देखा, तो मुश्तक और मुश्तक मिनहु के माना में मुनासिबत होती है, यहां इन दोनों के माना में कोई मुनासिबत नहीं है। तो आपको बतलाएंगे कि भाई इन दोनों के माना में मुनासिबत मौजूद है, और वो मुनासिबत दलालत इल्तिजामी के तरीके पर है। किस तरीके पर है, एक है दलालत मुताबिकी, एक है दलालत तजम्मुनी, और एक है दलालत इल्तिजामी। दलालत मुताबिकी ये है कि लफ्ज अपने पूरे माना मौजू लहू पर दलालत करे, जैसे इंसान का माना है हैवान नातिक, इंसान की हकीकत और माहियत क्या है, हैवान नातिक, तो इंसान जैसे ही हम बोलते हैं पूरा हैवान नातिक हमारे जहन में आ जाता है। तो लफ्ज अपने पूरे माने मौजू लहू पर दलालत करे तो इसको क्या कहते हैं, दलालत मुताबिकी, और लफ्ज अगर अपने माने मौजू लहू के जुज पर दलालत करे तो इसको कहते हैं दलालत तजम्मुनी, और लफ्ज अगर अपने माने मौजू लहू के खारिज पर दलालत करे तो इसको क्या कहते हैं, दलालत इल्तिजामी। तवज्जो है, जैसे इंसान, इंसान की हकीकत क्या, हैवान नातिक, तो इंसान की दलालत पूरे हैवान नातिक पर यह क्या है, दलालत मुताबिकी। इंसान की हकीकत क्या है, हवाने नातिक, तो पूरे माना पर ये दलालत जो है वो क्या है, दलालत मुताबिकी, और इस हैवान नातिक के एक जूस पर यानी सिर्फ हैवान पर या सिर्फ नातिक पर जो इसकी दलालत है वो दलालत क्या है, दलालत दलालत तजम्मुनी है। और लफ्ज अगर अपने माने मौजू लहू के खारिज पर दलालत करे, उसके लाजिम पर दलालत करे, तो उसको कहते हैं दलालत इल्तिजामी। जैसे इंसान की दलालत काबिलियत इलम पर, इंसान को अल्लाह ने किस चीज की सलाहियत दी है, इलम हासिल करने की सलाहियत अल्लाह ताला ने दी है, तो इंसान की दलालत किस पर, काबिलियत इलम पर, तो ये क्या है, दलालत इल्तिजामी है। माने मौजू लहू जानते हो, जिसके लिए एक लफ्ज को वजा किया गया हो, इंसान को किसके लिए वजा किया गया है, हैवान नातिक के लिए, तो इंसान का लफ्ज बोलो और पूरा माने मौजू लहू पर ये जो दलालत है ये क्या कहलाएगी, दलालत मुताबिकी, और इंसान का लफ्ज बोलो और सिर्फ किस पर दलालत मुराद हो, इंसान का पूरा माना क्या था, हैवान, आप से इंसान बोलें और सिर्फ किसका इरादा करें, हैवान का, या सिर्फ किसका इरादा करें, नातिक का, पूरे माने मौजू को लहू का नहीं बल्कि उसके एक जुज का इरादा करें, यह दलालत क्या है, दलालत तजम्मुनी है। तो इंसान बोलकर पूरा हैवान नातिक मुराद लें, यह क्या है, दलालत मुताबिकी, इंसान बोलकर सिर्फ हैवान मुराद लें या सिर्फ नातिक मुराद लें तो यह दलालत तजम्मुनी। और तीसरी किस्म है दलालत इल्तिजामी, जैसे इंसान के साथ लाजिम है काबिलियत इलम, अल्लाह ने उसमें इलम हासिल करने की सलाहियत रखी है, अल्लाह ताला ने इंसान में इलम हासिल करने की, तो इंसान बोलें और उसकी सलाहियत इलम का इरादा करें तो ये दलालत इल्तिजामी है। क्या लफ्ज बोलें, इंसान, और इरादा किसका करें, इलम की जो सलाहियत अल्लाह ने इसको दी है उसका इरादा करें। अब देखो, इंसान बोलकर आप किस माना का इरादा कर रहे हैं, इलम की सलाहियत का, हालांकि इंसान का लफ्ज तो इस इलम की सलाहियत के लिए वजा नहीं है, ये तो किसके लिए वजा है, हैवान नातिक के लिए, तो ये हैवान नातिक से अलग एक और माना का आप इरादा कर रहे हैं जो इस हैवान नातिक के साथ लाजिम है। बात समझ में आ रही, तो ये एक माना खारिजी है जो उस माना हकीकी के साथ लाजिम है, उस पर दलालत हुई, ये दलालत इल्तिजामी कहलाती है। तो शारह जामी आपको बतलाएंगे कि भाई कलिमा और कलाम मुश्तक हैं कलमुन से, और कलमुन का माना है जख्मी करना, और कलिमा कहते हैं लफ्जों वज़ी अली माना मुफरदी, और कलाम किसे कहते हैं, मातजम्मन कलिमतैन बिल इस्नाद, अगरचे यहां पर माने मुताबिकी और माने तजम्मुनी के एतबार से तो यहां मुनासिबत नहीं है। जख्मी करना और चीज, लफ्जों वुजिया लिमानन मुफरदिन और चीज, मा तजम्मना कलिमतैन बिल इस्नाद और चीज। तो अगरचे माने हकीकी के एतबार से इनमें मुनासिबत नहीं है, लेकिन माने इल्तिजामी के एतबार से मुनासिबत मौजूद है दोनों इनमें, मुश्तक में और मुश्तक मिनहू में। माना इल्तिजामी क्या कहते हैं, जख्मी करने के साथ तासीर लाजिम है। कोई किसी को जख्मी करता है, असर पड़ता है या नहीं, उसको तकलीफ तकलीफ होती है या नहीं, उसके जिस्म पर जख्म बन गया और उसको तकलीफ हुई, तो देखा ये जख्मी करने के अंदर असर, जिस्म पर असर पड़ता है, यानी यूं कहो जख्मी करने की तासीर है। इसी तरह ये कलिमा और कलाम की भी तासीर होती है। और देखो बाज आप सख्त कलाम करते हैं तो दूसरे को दिल में तकलीफ महसूस होती है, और कभी आप अच्छा कलाम करते हैं तो सुनने वालों को दिल में खुशी और सुरूर महसूस होता है। जैसे कलमुन यानी जख्मी करने की तासीर है, इसी तरह कलिमा और कलाम की भी तासीर होती है। तो दोनों में देखो मुनासिबत आ गई, कलमुन के साथ भी तासीर और कलिमा और कलाम के साथ भी तासीर है कि इनका असर पड़ता है। तो कहते हैं फकाल अल कलिमतु कील हिया वल कलामु मुश्तकानी मिनल कलमी बितस्कीन इल्लामी। कहा गया है कि हिया जमीर आ जाए कलिमा को, कि ये कलिमा और कलाम जो हैं मुश्तकानी, ये दोनों मुश्तक हैं मिनल कलमी, कलम से, कलम लफ्ज से मुश्तक हैं, बी तस्कीन लामी। और ये कलम लफ्ज क्या है, लाम के सुकून के साथ है, इसके लाम को साकिन पढ़ना। वह हुअल जरहु, और ये कलम उन किसे कहते हैं, जख्मी करना। जरह यजरहु जरहन, क्या माना, जख्मी करना, ये मस्तर है। लितासीरी मानी ही माफिन नुफूसी, इस वजह से कि तासीर है इन दोनों के मानी की, यानी कलिमा और कलाम के मानी की तासीर होती है। फिन नुफूस दिलों में, नफ्स का एक माना दिल के आते हैं, तो यहां वो दिल वाला माना कर लें। इसलिए तासीर मानी ही माफिन नुफूस ही, इसलिए क्योंकि कलिमा और कलाम के जो मानी हैं उनकी तासीर होती है, उनका असर होता है दिलों में। कल जुर्ही, किसकी तरह, जख्म की तरह। जरहुन जीम के फतहा के साथ पढ़ो तो इसका माना है जख्मी करना, ये मस्तर है। और जुरहुन पढ़ो तो ये जख्म को कहते हैं। जुरहुन किसे कहते हैं, तो इनके मानी की भी तासीर होती है दिलों में। कल जुरही, जैसे कि जख्म है, जैसे जख्म का असर होता है, इसी तरह कलिमा और कलाम का भी दिल में असर होता है। वकद अब्बरा बाजु शुअरा अन बाजी तासीरात हिमा बिल जुरही, और फिर आगे दलील भी दे रहे हैं भाई कि इनके मानी का असर पड़ता है दिलों पर। चुनांचे आगे एक शायर का शेर जिक्र करेंगे जिसके अंदर कलिमा और कलाम की तासीर को जख्म से ताबीर किया गया है। कलिमा और कलाम की तासीर को किससे ताबीर किया गया है, जख्म के साथ ताबीर किया गया है। वकद अब्बर बाजु शुअरा अन बाजी तासीरात हिमा बिल जुर्ही, और तहकीक ताबीर किया है बाज शुअरा ने अन बाजी तासीरात हिमा, कलिमा और कलाम की बाज तासीरात को, बिल जुर्ही, किसके साथ ताबीर किया है, जख्म के साथ ताबीर किया है। भाई देखिए तहकीक ताबीर किया है बाज शुअरा ने कलिमा और कलाम की बाज तासीरात को जख्म के साथ। तमाम तासीरात नहीं, हर तासीर कलिमा और कलाम की हर तासीर जख्म की तरह नहीं है भाई। देखो जख्म से इंसान को तकलीफ होती है, और हर कलाम से दूसरे को तकलीफ होती है, या बास कलाम से दूसरे को खुशी भी होती है। आप किसी अच्छा कलाम करें दूसरे को गम होगा या खुशी होगी, और अगर बुरा भला कहें तो उसको क्या होगी, तकलीफ। तो मालूम हुआ ये जो तकलीफ है ये उस जख्म के मुशाबे है। जैसे जख्म से बदन को दर्द होता है, इसी तरह इन अल्फाज से दिल में तकलीफ होती है। तो ये तमाम तासीरात नहीं है बल्कि बाज़े तासीरात हैं। बाज़े तासीरात वो दुख और गम का बाइस बनेंगी और बाज़े तासीरात क्या है, खुशी और सुरूर का बाइस बनेंगी। इसीलिए कहा वक़द अब्बरा बाज़ु शुआरा अन बाज़ी तासीरातिहिमा बिल जुर्ही, कि तहकीक ताबीर किया बाज़ शायरों ने इनकी बाज़े तासीरात को जख्म के साथ, हैसु क़ाला, इस हैसियत से के फरमाया, शेर ये शेर है, जिराहातु सिनानी लहलतियामो वला यल्तामु मा जरहल लिसानो। जिराहातु सिनानी, जिराहात जमा है जिराहतुन की, जिराहतुन जख्म को कहते हैं, वही जो जुरहुन का माना है वही माना किसका है, जिराहतुन का, तो जिराहात उसकी जमा है। असिनान, सिनान याद रखिए नेजे का फल जो है, नेजे का फल, नेजा लकड़ी का होता है लेकिन उसका अगला सिरा जो है वो तेज धार लोहे का बना होता है, उसको सिनान कहते हैं, उसकी जमा असिन्ना आती है, असिन्नतुन। जिराहातु सिनानी लहलतियामो, इल्ताम यल्तामो, इल्तियाम का माना है भर जाना, इल्तियाम का क्या माना,
भर जाना,
भर जाना। और इसका मादा याद रखना भाई, तुलबा परेशान होते हैं कि इसका मादा क्या है, इसका मादा है लामा, लाम हमजा और मीम, लाम इसका मादा, इल्तियाम का मादा क्या है, लामा, लाम हमजा और मीम। लिहाजा अगर आप लुगत में देखेंगे तो उमूमन तुलबा किस में देखेंगे, लाम या और मीम में देखेंगे, इल्तियाम है ना तो वहां नहीं मिल देगा, तो ये लाम हमजा और मीम है इसका मादा। तो असल में ये था इल्ते आम बई, ये या की जगह हमजा थी, इल्ते आम बई, फिर माकबल कसरा की वजह से इस हमजा को किससे बदल दिया, या से, क्या बन गया, इल्ते आम। इल्ते आम का माना जख्म का भर जाना, जख्म का ठीक हो जाना। तो शायर कहता है जिराहातु सिनानी लहलती आम, नेजों के फल के जो जख्म होते हैं, यानी यूं कहो नेजों, नेजों के जो जख्म होते हैं, लहलतियामो उनके लिए भर जाना है, यानी वो भर जाते हैं, नेजों के जख्म भर जाते हैं, वलायल्तामो मा जरहल लिसानो, और नहीं भरते मा जरहल लिसानो वो जो जुबान जख्म लगाए, जुबान जो जख्म लगाती है वो नहीं भरते, नेजों के जख्म भर जाते हैं लेकिन जुबान के जख्म नहीं भरते। भाई आप भी देखते हैं बाज कोई आदमी ऐसी बात कर देता है कि इंसान फिर उसको भुला ही नहीं पाता, भाई इतनी तकलीफ उसको होती है। तो माना यह कि नेजों के जख्म तो लग भी जाएं बदन पर वो बिल आखिर ठीक हो जाते हैं, लेकिन जुबान का लगाया हुआ जख्म वो हमेशा दिल पर बाकी रहता है। जिराहातु सिनानी लहलतियामु वला यल्तामु मा जरहल लिसान, नेजों के जो जख्म हैं वो भर जाते हैं लेकिन जुबान के लगाए हुए जख्म नहीं भरते। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि ये हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का शेर है, खलीफा राशिद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का शेर है। देखा इस शेर में भी क्या कहा, जुबान के लगाए हुए जख्म नहीं भरते। तो जुबान की वो जो तासीर है, इसने दिल पर जो दिल को जो तकलीफ पहुंचाई उसको किससे ताबीर कर दिया, जख्म के साथ। हासिल कलाम क्या हुआ कि बाज़ उलमा फरमाते हैं कि कलिमा और कलाम कलमुन से मुश्तक हैं, और कलमुन का माना है जख्मी करना, ये कलिमा और कलाम कलमुन से मुश्तक हैं। इस पर सवाल पैदा हुआ कि मुश्तक और मुश्तक मिनहू के माना में तो मुनासिबत होती है, यहां तो इन दोनों के माना में कोई मुनासिबत नहीं है। मुश्तक मिनहू का क्या तर्जमा, जख्मी करना, और कलिमा का और माना, कलाम का और माना। तो उसका जवाब दिया कि भाई इन दोनों के माना में मुनासिबत मौजूद है, दलालत मुताबकी या तजमुनी के एतबार से तो मुताबकत नहीं, लेकिन दलालत इल्तिजामी के एतबार से यहां मुताबकत है, क्योंकि जख्मी करने के साथ लाजिम है तासीर, असर होना, यानी दर्द पहुंचना, तकलीफ पहुंचना। और इसी तरह लफ्जों के साथ भी बाज़ोकात क्या असर पहुंचता है, दिलों को तकलीफ पहुंचती है। तो जख्मी करने के साथ क्या लाजिम, असर। इसी तरह बाज़ अल्फाज के साथ भी जख्म जैसा असर लाजिम है भाई, दलालत इल्तिजामी के एतबार से इनमें मुनासिबत आ गई। इस पर फिर इश्काल होता है कि भाई अलकलिमतु वल कलाम, कलाम तो मस्दर है, कलाम क्या है
मस्दर,
और मस्दर किसी से मुश्तक नहीं होता, मस्दर से आगे अल्फाज मुश्तक होते हैं। जरबुन मस्दर है, इसे जराबा बना, यजरीबु बना, जारिबुन बना, मजरूबुन बना, लेकिन खुद जरबुन किसी से मुश्तक नहीं, तवज्जो है, मस्दर तो मुश्तक मिनहु होता है, तो यहां पर कलाम जो मस्दर है उसको कैसे मुश्तक कह दिया कि ये कलमुन से मुश्तक है। एतराज समझ में आया? तो तफसील याद रखो भाई कि सबसे पहले तो यह समझ लें कि इश्तिकाक तीन किस्म पर है भाई, एक इश्तिकाक सगीर है, एक इश्तिकाक कबीर है और एक इश्तिकाक अकबर है। तवज्जो से अच्छी तरह समझ लें भाई, क्या एक इश्तिकाक सगीर, एक कबीर और एक अकबर। इश्तिकाक सगीर वही जो आपने सर्फ में पढ़ा है, इसको सर्फी इश्तिकाक भी कहते हैं कि जरबुन से क्या बना, जराबा, इसी तरह जरबुन से क्या बना, यजरीबू, इसी तरह जरबुन से क्या बना, जारिबुन, इसी तरह जरबुन से क्या बना, मजरूबुन वगैरह भाई, ये सर्फी इश्तिकाक है, इसी को इश्तिकाक सगीर भी कहते हैं। इश्तिकाक सगीर, इश्तिकाक सगीर यह है कि दो लफ्जों के दरमियान माना में भी मुनासिबत हो और उनके हरूफ असलिया और हरूफ असलिया की तरतीब में इत्तेफाक हो। तवज्जो है, इश्तिकाक किसे कहते हैं कि मुश्तक और मुश्तकमीन हो, दोनों लफ्ज जो हैं उनमें उनमें माना के अंदर भी मुनासिबत हो और उन दोनों में इत्तेफाक हो, हुरूफ असलिया में भी और हुरूफ असलिया की तरतीब में भी। दोहराइए भाई, किसे कहते हैं इश्तिकाक के सगीर के दो लफ्जों के अंदर माना के अंदर मुनासिबत हो और इत्तेफाक हो उन दोनों लफ्जों के हुरूफ असलिया में भी और उनकी तरतीब में भी। फिर दोहराओ, इश्तिकाक के सगीर किसे कहते हैं कि दो लफ्जों में माना के अंदर भी मुनासिबत हो और लफ्जों यूं कहो, बल्कि यूं कहो, माना में भी मुनासिबत हो और लफ्जों में भी मुनासिबत हो। और लफ्जों में मुनासिबत किस तरह हो कि दोनों में हरूफ असलिया और उनकी तरतीब में इत्तेफाक हो, जो हरूफ असलिया एक में है वही दूसरे में भी हो, नीज जैसी तरतीब एक में है हरूफ असलिया की दूसरे में भी वही तरतीब हो, तो हरूफ असलिया और उनकी तरतीब दोनों में इत्तेफाक होना चाहिए, इसको कहते हैं इश्तिकाक सगीर, यह इसी को इश्तिकाक सरफी भी कहते हैं। मसलन जरबुन से क्या बना, जाराबा, देखो जरबुन का माना भी पिटाई करना, जाराबा का माना भी उसने जमाने माजी के अंदर पिटाई की, तो माना के अंदर मुनासिबत आ गई या नहीं, माना में मुनासिबत है, नीज लफ्जों में भी मुनासिबत है। लफ्जों में मुनासिबत कैसे है कि दोनों के हरूफ असलिया और उनकी तरतीब एक जैसी है, दोनों में इत्तेफाक है। जरबुन के हरूफ असलिया क्या, ज़ाद राबा, और जाराबा के हरूफ असलिया भी क्या, ज़ाद राबा, तो हरूफ असलिया में इत्तेफाक है, बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए और नीज इनकी तरतीब भी एक जैसी होनी चाहिए, उसमें भी इत्तेफाक होना चाहिए। जरबुन में पहले ज़ाद है फिर रा है फिर बा, और जाराबा में भी पहले ज़ाद है फिर रा है फिर बा। इसी तरह दूसरे लफ्ज को देख लो, जारिबुन, जारिबुन भी जरबुन से मुश्तक है, देखो जरबुन का माना पिटाई करना और जारिबुन का माना पिटाई करने वाला, देखो माना में मुनासिबत है और लफ्जों में भी मुनासिबत है। लफ्जों में मुनासिबत क्या कि दोनों के हरूफ असलिया और उनकी तरतीब में इत्तेफाक हो, हरूफ असलिया जरबुन के क्या है, ज़ाद रा बा, जारिबुन में भी हरूफ असलिया क्या, ज़ाद रा बा, देखा हरूफ असलिया में इत्तेफाक है, बिल्कुल एक जैसे हैं और नीज उनकी तरतीब भी एक जैसी है, जरबुन में ज़ाद पहले रा बाद में और बा आखिर में, इसी तरह जारिबुन में भी है। बात समझ में आ, वहां भी ज़ाद पहले रा बाद में और बा सबसे आखिर में है। तो इश्तिकाक सगीर किसे कहते हैं कि दो लफ्जों के अंदर माना में भी मुनासिबत हो और लफ्जों में भी मुनासिबत हो। लफ्जों में मुनासिबत किस तरह हो कि दोनों के हरूफ असलिया और उनकी तरतीब में इत्तेफाक हो। यह है इश्तिकाक सगीर। दूसरा है इश्तिकाक कबीर। इश्तिकाक कबीर में दो लफ्जों में मुनासिबत होती है, लफ्जों के एतबार से भी और माना के एतबार से भी। तवज्जो है, दो लफ्जों में मुनासिबत है, किस एतबार से, माना के एतबार से भी और लफ्जों के एतबार से भी। लफ्जों के एतबार से यहां थोड़ा फर्क आएगा, कैसे मुनासिबत है। लफ्जों के एतबार से मुनासिबत यूं होगी कि जो हरूफ असलिया एक के हैं वही हरूफ असलिया दूसरे के भी हों, यानी हरूफ असलिया में तो इत्तेफाक हो, उनकी तरतीब में इत्तेफाक ना हो। तो इश्तिकाक कबीर किसे कहते हैं कि दो लफ्जों में, माना में भी मुनासिबत हो और लफ्जों में भी। लफ्जों में किस तरह की मुनासिबत हो, इश्तिकाक सगीर में क्या था, हुरूफ असलिया और उनकी तरतीब में इत्तेफाक, यहां है हुरूफ असलिया में इत्तेफाक हो बस, उनकी तरतीब में इत्तेफाक ना हो। जैसे जाबाजा और जाजाबा, जाबाजा का माना भी खींचना और जाजाबा का माना भी खींचना, देखा माना में मुनासिबत है या नहीं, एक का माना भी खींचना दूसरे का माना भी खींचना, और लफ्जों में भी मुनासिबत है। किस तरह के जाजाबा के हुरूफ असलिया क्या, जीम दाल और बा, और जबाजा के अंदर भी देख लें जीम बा दाल, वही तीन हुरूफ हैं, हुरूफ असलिया में इत्तेफाक है, अलबत्ता उनकी तरतीब में इत्तेफाक नहीं है। जजबा में जीम के बाद जाल है फिर बा है, जबकि जबाजा में जीम के बाद बा है फिर जाल है। फर्क समझ में आया। इधर देखिए, इश्तिकाक सगीर में हुरूफ असलिया के अंदर इत्तेफाक होगा, और इश्तिकाक कबीर में भी हुरूफ असलिया में इत्तेफाक, लेकिन इश्तिकाक सगीर में हुरूफ असलिया की तरतीब में भी इत्तेफाक होगा, जबकि इश्तिकाक कबीर में हुरूफ असलिया की तरतीब में इत्तेफाक नहीं होगा। तीसरा है इश्तिकाक अकबर भाई, इश्तिकाक अकबर, इश्तिकाक अकबर इसे कहते हैं कि दो लफ्जों में माना के अंदर मुनासिबत हो और बाज़े हुरूफ असलिया के अंदर इत्तेफाक, बाज़े हुरूफ असलिया में इत्तेफाक, दो लफ्जों में माना में भी
इत्तेफाक,
माना में मुनासिबत हो और बाज़े हुरूफ असलिया में इत्तेफाक। मसलन फसलुन फास्वाद लाम, फसलुन का माना जुदा करना, इसी तरह फसमुन फास्वाद मीम, उसका माना भी जुदा करना। तो देखो माना के अंदर दोनों में मुनासिबत है और लफ्जों के अंदर भी मुनासिबत है। किस तरह कि बाज़े हुरूफ असलिया में इत्तेफाक है, फसलुन में हुरूफ असलिया क्या, फा स्वाद लाम, और फसमुन में हुरूफ असलिया क्या, फा स्वाद मीम। तो देखा फा और स्वाद जो दो हुरूफ असलियां हैं उनमें मुनासिबत मौजूद है। हाँ, एक में लाम है तो दूसरे में मीम, उसमें मुनासिबत नहीं है, लेकिन फा और स्वाद में मुनासिबत है। फा यूं कहें, फा और स्वाद में इत्तेफाक है, दो हुरूफ असलिया में इत्तेफाक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब जरा जल्दी जल्दी दोहरा लें भाई, इश्तिकाक सगीर किसे कहते हैं कि दो लफ्जों में माना के अंदर भी मुनासिबत हो और लफ्जों में भी मुनासिबत हो। लफ्जों में मुनासिबत किस तरह हो कि हुरूफ असलिया और उनकी तरतीब में इत्तेफाक हो। इश्तिकाक कबीर किसे कहते हैं कि दो लफ्जों में माना में भी मुनासिबत और लफ्जों में भी मुनासिबत, लेकिन वो किस तरह, लफ्जों में मुनासिबत किस तरह कि उनके हुरूफ असलिया में इत्तेफाक हो, उनकी तरतीब में इत्तेफाक ना हो। और इश्तिकाक अकबर किसे कहते हैं कि दो लफ्जों में माना में भी मुनासिबत हो और उनके बाज़े हुरूफ असलिया में भी इत्तेफाक हो। बात समझ में आ गई। अच्छा, बात यह चल रही थी कि शारह जामी ने फरमाया है कि बाज़ उलमा फरमाते हैं कि कलिमा और कलाम मुश्तक हैं किस से, कलमुन से। किससे मुश्तक हैं, कलमुन से मुश्तक हैं। दोनों में लफ्जों में तो मुनासिबत जाहिर है कि एक में काफ लाम मीम मादा है, तो बाकियों में भी क्या है, काफ लाम मीम जो है वो मादा है, लेकिन माना के एतबार से मुनासिबत मालूम नहीं हो रही थी। तो उसके बारे में भी बतला दिया कि यहां माना में दलालत इल्तिजामी के एतबार से मुनासिबत है, दलालत मुताबिकी के एतबार से मुनासिबत नहीं है। और फिर इस पर एतराज जिक्र मैंने किया कि कलीमा और कलाम, इसमें तो कलाम मस्तर है भाई, और मस्तर का इश्तिकाक तो किसी से नहीं होता, मस्तर तो मुश्तक मिनहू होता है, मुश्तक नहीं होता, लेकिन आपकी बात मान ली जाए तो कलाम को मुश्तक मानना पड़ेगा। इतराज समझ में आ रहा है तो याद रखना यह तफसील जो मैंने इतनी लंबी तफसील बयान की, मकसद उसका यह था कि इश्तिकाक की पूरी तफसील मैं बयान कर दूं। यह जगह जगह किताबों में कहीं इश्तिकाक सगीर आता है, कभी इश्तिकाक कबीर आता है और कभी अकबर। अब देखिए यहां पर इश्तिकाक सगीर, कबीर और अकबर, इन तीनों में आपने देखा कि लफ्जों के हकीकी माना के अंदर मुनासिबत थी। किसमें?
लफ्जों के हकीकी माना,
हकीकी माना में क्या थी? मुनासिबत थी। जरबुन का माना भी पिटाई करना और जारिबुन का माना पिटाई करने वाला। इसी तरह जबाजा और जजबा दोनों का माना क्या है? खींचना। इसी तरह फसलुन और फसमुन का क्या माना है? जुदा करना। तो देखो माने हकीकी के अंदर मुनासिबत मौजूद है और इश्तिकाक के अंदर माने हकीकी के अंदर जो मुनासिबत है वो मोतबर है। लफ्ज को जिस माना के लिए वजह किया जाए वो क्या है? उसका माना है हकीकी। जबस किसके लिए वजह है? खींचने के लिए। और जजब भी किसके लिए वजह है? खींचने के लिए। फसल किसके लिए वजह है? जुदा करने के लिए। फसम भी किसके लिए वजह है? जुदा करने के लिए। बात समझ में आ गई? तो माने हकीकी के अंदर जो इश्तिकाक होता है उसमें माने हकीकी के अंदर मुनासिबत होती है, माने हकीकी के अंदर। और यहां पर किस चीज में मुनासिबत जिक्र की जा रही है? दलालते इल्तिजामी, माने इल्तिजामी के एतबार से जो है मुनासिबत जिक्र की जा रही है। यानी मालूम हुआ कलम की मुनासिबत कलिमा और कलाम से, हकीकी माना के एतबार से कोई मुनासिबत नहीं है। कलम उनका माना जख्मी करना और कलिमा और कलाम का और माना है, तो हकीकी माना के एतबार से यहां मुनासिबत नहीं। हालांकि इश्तिकाक की तीनों किस्मों के अंदर आपने देखा कि वह हकीकी माना के एतबार से मुनासिबत होनी चाहिए, वही मोतबर है, वही मोतबर है। तो चूंकि ये एक यहां हकीकी माना के एतबार से कोई मुनासिबत नहीं है, कमजोर कौल है, इसीलिए साहिब जामी ने अलकलिमतु कीला कीला के साथ इसको जिक्र किया है। कीला कीला सिगे तमरीज कहलाता है, तमरीज भाई मरज से है, मरज। जैसे मरीज क्या होता है? कमजोर। इसी तरह यकीला के जरिए भी कमजोर बात जिक्र की जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सिगए तमरीज। तो इस कौल को साहिब जामी ने किस तरह जिक्र किया? कीला के साथ जिक्र किया है कि, और कीला क्या है? सिगए तमरीज, यानी यह कमजोर कौल है, यह कोई कतई बात नहीं है। मतलब यह है कि बाज़ उलमा ने नफ्स से मुनासिबत बयान की, यह इश्तिकाक नहीं है। दरअसल यहां इश्तिकाक नहीं है बल्कि नफ्स से मुनासिबत जिक्र की जा रही है। किसके दरमियान? कलमुन और कलिमा और कलाम के दरमियान मुनासिबत जिक्र की जा रही है और इसी मुनासिबत को इश्तिकाक का नाम दे दिया गया। तो यहां इश्तिकाक नहीं है, यह नफ्स से मुनासिबत जिक्र की गई है। जैसे इसकी और वजाहत बाज़ उलमा फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि यूं कहना चाहिए था कि काफ लाम मीम, कि काफ लाम मीम का मादा जहां आएगा वहां शिद्दत और कुव्वत का माना पाया जाएगा। तवज्जो है, मुनासिबत जिक्र करना चाहते थे सिर्फ, काफ लाम मीम का मादा जहां आएगा वहां शिद्दत और कुव्वत वाला माना पाया जाएगा। देखो कलमुन काफ लाम मीम मादा आ गया और इसका क्या माना? जख्मी करना, और जख्मी करने में भी शिद्दत और कुव्वत है या नहीं? बगैर शिद्दत और कुव्वत के जख्म लगेगा नहीं, जख्म तभी लगेगा जब कोई जर्ब किसके साथ हो? शिद्दत और कुव्वत के साथ हो। नीज कलिमा और कलाम में भी बतलाया कि इनमें भी मादा क्या है? काफ लाम मीम, और काफ लाम मीम का मादा जहां आए वहां क्या होगा? शिद्दत और कुव्वत वाला माना होगा। और आप जानते हैं कलाम और कलिमा कितनी, इनमें कितनी शिद्दत और कुव्वत होती है भाई। कलाम का जख्म कभी भरता ही नहीं है भाई। तो कलिमा और कलाम, ये इनका मादा भी काफ लाम मीम और इनके अंदर भी शिद्दत और कुव्वत वाला माना है। समझ में आया? शिद्दत और कुव्वत, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा असर पड़ता है, तो इनके यानी इनके असर में बहुत कुव्वत है भाई। और इसी तरह बुरे अल्फाज कह दो तो दूसरे को कितनी तकलीफ पहुंचती है, मालूम हुआ इनमें कितनी शिद्दत और कुव्वत है भाई। तो यहां क्या बयान करना चाहते थे मुसन्निफ के? कलीम, इसी तरह कलीमा और कलाम, इन सब में क्या है? मुनासिबत मौजूद है। काफ लाम मीम का मादा है इनमें, और काफ लाम मीम का मादा जहां है वहां उसमें शिद्दत और कुव्वत वाला माना होता है। जैसे जीम नून नून। उलमा फरमाते हैं जहां जीम नून नून का मादा आएगा वहां छुपने का माना होगा, छुपने का माना। जैसे जन्नतुन, देखो जन्नत जीम है और नून मुशद्दद है, यानी दो नून है, और जन्नत भी हमारी नजरों से पोशीदा है इस वक्त भाई। इसी तरह जिन है भाई, जिन में भी क्या है, नून मुशद्दद, जीम नून नून का मादा आ गया और जिन भी हमारी नजरों से पोशीदा है भाई। इसी तरह जनीन है भाई, जनीन इसमें भी जीम नून नून है। जनीन वो बच्चा जो मां के पेट में होता है, देखो वो भी हमारी निगाहों से पोशीदा है। तो जहां जीम नून नून का मादा आएगा वो उसमें छुपने का माना होगा। इसी तरह काफला मीम का मादा जहां आएगा वहां उसमें शिद्दत और कुव्वत वाला माना होगा। तो ये इन दोनों में मुनासिबत को सिर्फ जिक्र कर रहे थे, और इस मुनासिबत को किसी ने बड़े प्यारे अंदाज में जिक्र किया था कि कलमुन को मुश्तक मिनहू बनाया और कलिमा और कलाम को क्या बनाया, मुश्तक बनाया। तो ये चूंकि इनमें बड़ी प्यारी मुनासिबत इन्होंने जिक्र की थी, इसलिए शरे जामी ने उसको जिक्र कर दिया, अलबत्ता कीला के साथ सीगे तमरीज के साथ उसको जिक्र किया भाई। तफसील समझ में आ गई, तो बात समझ में आ गई भाई। मैंने आपको बताया कि इश्तिकाक की तीन किस्में हैं, इश्तिकाक सगीर, कबीर और अकबर, और उन सब के अंदर माना में भी मुनासिबत होती है और लफ्जों में भी। और माना कौन सा, माने हकीकी भाई, और यहां पर जो मुनासिबत जिक्र की गई है वो माने हकीकी के एतबार से नहीं है, बल्कि माना माने इल्तिजामी, यानी दलालत इल्तिजामी के एतबार से, यूं कहो माने मजाजी के एतबार से। किस एतबार से, एक हकीकी माना जिसके लिए लफ्ज को वजह किया जाए, और एक मजाजी माना जिसके अंदर उसको कोई माने हकीकी के अलावा किसी और माना में इस्तेमाल किया जाए, तो उसको क्या कहते हैं, माने मजाजी। तो यहां पर जो मुनासिबत जिक्र की गई वो माने मजाजी के एतबार से जिक्र की गई, कि जैसे जख्मी करने के साथ तासीर लाजिम, इसी तरह कलिमा और कलाम के साथ भी तासीर लाजिम है। तो ये तो माने मजाजी के एतबार से मुनासिबत जिक्र की, हालांकि इश्तिकाक के अंदर माने हकीकी में मुनासिबत जरूरी होती है। तो मैंने बताया कि यहां पर सिर्फ मुनासिबत बयान करना मकसूद है, और इस मुनासिबत को चूंकि बाज़ उलमा ने बड़े प्यारे अंदाज में जिक्र किया था, तो शारह जामी ने उसको उन्हीं के अंदाज में यहां पर उसको जिक्र कर दिया भाई। वरना यह ना इश्तिकाक सगीर है, न इश्तिकाक कबीर है, न इश्तिकाक अकबर है भाई। बात अच्छी तरह समझ में आ गई। हासिल कलाम यह कि शुरू में शारह जामी ने आपको बतलाया कि अल्लामा इब्ने हाजिब ने अपनी किताब काफिया में बिस्मिल्लाह के बाद अल्हम्दुलिल्लाह को जिक्र नहीं किया, कसरे नफसी से काम लेते हुए, यानी आजिजी से काम लेते हुए, क्योंकि उन पर एतराज होता है कि हमारे तमाम सलफ सालहीन ने बिस्मिल्लाह के बाद अल्हम्दुलिल्लाह को जिक्र किया है अपनी किताबों में, तो ऐ साहिब काफिया आपने बुजुर्गों के तरीके की पैरवी क्यों नहीं की। तो उसका जवाब दिया साहिब जामी ने कि साहिब काफिया ने कसरे नफसी से काम लेते हुए अपनी किताब के आगाज में अल्हम्दुलिल्लाह को जिक्र नहीं किया, कि मेरी यह किताब आम सी मामूली सी मेरी किताब है, ये बुजुर्गों की किताबों की तरह नहीं कि मैं उनके तरीके पर इसको शुरू करता। फिर इस पर इश्काल हुआ कि फिर तो हदीस की मुखालिफत लाजिम आई, क्योंकि हदीस में आता है कुल्लु अमरिन ज़ीबानिन लम युब्दा फीहि बिहम्दिल्लाहि फहुवा अबतर, के हर जुशान काम जिसको अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू न किया जाए वो नाकिस होता है, अधूरा होता है, बेबरकत होता है। तो उसका जवाब भी मुल्ला जामी ने दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह को किताब का जुज न बनाने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह को जिक्र नहीं किया होगा। हदीस के अंदर मुतलकन शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह लाने का जिक्र है, और अल्हम्दुलिल्लाह लाने की दो सूरतें हैं, एक ये कि जुबान से जिक्र किया जाए, और एक सूरत यह कि किताबत की जाए, उसको बाकायदा लिखा जाए। तो साहिब काफिया ने बेशक इस अल्हम्दुलिल्लाह को किताब का जुज नहीं बनाया, लेकिन इसका यह मानना नहीं कि वो शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह लाए ही नहीं और यह किताब बेबरकत है, बल्कि उन्होंने जुबान के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह को अदा कर दिया होगा भाई। तो जुबान से भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली जाए तो हदीस पर अमल हो जाता है। बात समझ में आ गई। उसके बाद दूसरा एतराज यह हुआ कि इल्म नहव का मौजू कलिमा और कलाम है, लिहाजा साहिब काफिया को कलिमा और कलाम के अहवाल से बहस शुरू करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने शुरू में कलिमा की तारीफ जिक्र कर दी। तो उसका जवाब भी दिया कि भाई किसी चीज को जब जाना जाएगा उसके बाद ही उसके अहवाल से बहस की जाएगी, जब तक तालिब इलम को कलिमा और कलाम का पता नहीं होगा तो वो उनके अहवाल से कैसे बहस कर सकेगा। तो चुनांचे इसीलिए फिर वो शुरू में कलिमा की तारीफ लेकर आए और आगे चलकर फिर उन्होंने कलाम की भी तारीफ जिक्र की। फिर इश्काल हुआ कि कलिमा और कलाम में से कलाम वो मुफीद है, वो फायदा देता है, उसमें बात पूरी समझ में आ जाती है। मसलन मैंने कहा जैदुन आलिमुन, जैद आलिम है, देखो एक पूरी बात आपको पता चल गई। तो कलाम मुफीद है और कलिमा गैर मुफीद है, उससे बात का पूरा पता नहीं चलता। तो लिहाजा जो मुफीद है यानी कलाम उसको मुकद्दम करना चाहिए था और जो गैर मुफीद है यानी कलिमा उसको मुअख्खर करना चाहिए था। फिर मुसन्निफ ने कलिमा की तारीफ क्यों मुकद्दम की कलाम की तारीफ पर, तो उसका भी जवाब दिया कि भाई ये जो कलिमा है ये जुज है कलाम का, कलिमा जुज है कलाम का और कलिमे का जो मफहूम है वो जुज है कलाम के मफहूम का और जुज मुकद्दम होता है कुल पर। जैसे मैंने मिसाल देकर समझाया था कि एक है गाड़ी और एक है गाड़ी के तमाम अज्जा, गाड़ी के तमाम अज्जा, तो पहले गाड़ी के अज्जा बनते हैं उसके बाद उनको जोड़कर गाड़ी बनाई जाती है, तो जुज क्या होता है कुल पर मुकद्दम होता है। इसीलिए साहिब काफिया ने भी कलिमा को जो कि जुज था कलाम का उसको मुकद्दम किया। उसके बाद मतन शुरू हुआ था काफिया का और पहला लफ्ज अल कलिमा आया, तो मुल्ला जामी ने कलिमा की तहकीक शुरू की और आपको बतलाया कि कलिमा और कलाम ये दोनों मुश्तक हैं कलमुन से, ये दोनों क्या हैं मुश्तक हैं कलमुन से। याद रखो एक होता है मुश्तक और एक होता है मुश्तक मिनहु, जिससे इश्तिकाक किया जाए उसको कहते हैं मुश्तक मिनहु। देखो तर्जमे से बात समझ में आ रही है, मुश्तक मिनहु यानी मुश्तकुन मिनहु, इससे इश्तिकाक किया गया है और जिसका इश्तिकाक किया जाए उसको मुश्तक कहते हैं। जैसे जरबुन ये मस्तर है और इसी से जरबा बना, यजरिबू बना, जारिबुन बना, तो जरबुन को क्या कहेंगे मुश्तक मिनहु और जरबा यजरिबू और जारिबुन को मुश्तक कहेंगे। तो शारह जामी ने आपको बतलाया कि बाज़ उलमा फरमाते हैं कि जो कलिमा और कलाम हैं ये मुश्तक हैं कलमुन से। इस पर इश्काल हुआ कि मुश्तक और मुश्तक मिनहु के अंदर लफ्जों में भी मुनासिबत जरूरी और माना के अंदर भी मुनासिबत जरूरी है। लफ्जों के अंदर तो मुनासिबत हमें नजर आ रही है कि कलमुन के हुरूफ असलिया क्या काफ लाम मीम, इसी तरह कलिमा और कलाम के हुरूफ असलिया भी क्या है काफ लाम मीम, लेकिन माना के अंदर भी मुश्तक और मुश्तक मिनहु के अंदर मुनासिबत होती है जो यहां दिखाई नहीं दे रही, जो यहां मालूम नहीं हो रही। तो इन्होंने आपको बतलाया कि इन दोनों के माना के अंदर भी मुनासिबत है दलालत इल्तिजामी के एतबार से। किस एतबार से दलालत, मैंने आपको बतलाया कि दलालत की तीन किस्में हैं, दलालत मुताबिकी, दलालत तजमुनी और दलालत इल्तिजामी। दलालत मुताबिकी यह है कि लफ्ज अपने पूरे माने मौजू लहू पर दलालत करे, यह क्या है दलालत मुताबिकी। जैसे इंसान का लफ्ज हैवान नातिक के लिए वजह है तो इंसान की दलालत पूरे हैवान नातिक पर, यह क्या है दलालत मुताबिकी। और इसमें से अगर लफ्ज इंसान बोला जाए और सिर्फ हैवान या नातिक का इरादा किया जाए, इंसान का मफहूम क्या हैवान नातिक, तो इंसान की दलालत सिर्फ हैवान पर या इंसान की दलालत सिर्फ नातिक पर यानी जुज पर, यह क्या कहलाती है दलालत तजमुनी कहलाती है। तवज्जो है, दलालत तजमुनी कहलाती है। और लफ्ज की दलालत माने मौजू लहू के लाजिम पर यानी उसके खारिज पर, यह दलालत इल्तिजामी कहलाती है। जैसे इंसान के साथ काबिलियत इलम लाजिम है यानी इंसान में अल्लाह ने इलम हासिल करने की सलाहियत रखी है, तो इंसान की दलालत पूरे हैवान नातिक पर, यह क्या है दलालत मुताबिकी। इंसान की दलालत सिर्फ हैवान पर या सिर्फ नातिक पर यानी माने मौजू लहू के जुज पर, यह क्या है दलालत तजमुनी। और इंसान की दलालत माने मौजू लहू के लाजिम और उसके खारिज पर जो दलालत है वो दलालत इल्तिजामी कहलाती है। तो यहां पर मुश्तक और मुश्तक मिनहू के दरमियान दलालत मुताबिकी और तजमुनी के एतबार से तो मुनासिबत नहीं, लेकिन दलालत इल्तिजामी के एतबार से मुनासिबत है। इसलिए क्योंकि कल मुन का क्या माना जख्मी करना, और जख्मी करने के साथ तासीर लाजिम है। क्या लाजिम है तासीर यानी असर डालना। देखो किसी को जख्मी करेंगे तो उसको तकलीफ होगी, तो देखा यह है कलमुन की तासीर भाई, जिसम पर क्या असर पड़ा तकलीफ हुई, तकलीफ हुई। और इसी तरह कलिमा और कलाम की भी तासीर होती है, वो दिलों पर असर डालते हैं। किसी से अच्छा कलाम करें तो वो खुश होता है, और किसी से बुरा कलाम करें, बुरा भला कहें, तो वो गमजदा होता है, उसे दुख होता है, तकलीफ होती है। तो जैसे कलमुन यानी जख्मी करने के अंदर तासीर है, इसी तरह कलिमा और कलाम के माना के साथ भी क्या लाजिम है? तासीर। जख्मी करने के साथ भी तासीर लाजिम, और कलिमा और कलाम के साथ भी तासीर लाजिम है। और फिर इस पर शेर भी जिक्र किया था, वो शेर जिसके बारे में बाग़ उलमा फरमाते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का शेर है, जिसमें कलाम के बाज तासीरात को जख्म के साथ ताबीर किया गया था कि जिराहात उस्सिनानी लहलती आमू, कि नेजों के जो जख्म हैं वो तो भर जाते हैं, वला यल्तामु मा जरहल लिसानू, लेकिन जुबान के जख्म नहीं भरते। नेजों के जख्म भर जाते हैं लेकिन जुबान के जख्म नहीं भरते। देखा, यहां जुबान के जख्म कहा, यह मालूम हुआ वो जो कलिमा और कलाम है उसकी तासीर को किसके साथ ताबीर किया? जख्म के साथ ताबीर किया, कि बास कलाम इतनी तकलीफ वाले होते हैं जो इसी तरह तकलीफ देते हैं जैसे जख्म होता है, बल्कि जख्म से बढ़कर होती है इनकी तकलीफ। जख्म तो किसी न किसी वक्त जिस्म पर भर जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन दिल पर जो जख्म लगता है वो कभी नहीं भरता भाई। उसके बाद फिर मैंने आपको बतलाया कि यहां जो इश्तिकाक जिक्र हुआ उससे इश्तिकाक इस्तिलाही मुराद नहीं हो सकता, क्योंकि इश्तिकाक इस्तिलाही जो है वो तीन किस्म पर है। एक को इश्तिकाक सगीर कहते हैं, और एक को कबीर, और एक को अकबर। इश्तिकाक सगीर, इश्तिकाक कबीर और इश्तिकाक अकबर। इश्तिकाक सगीर को इश्तिकाक सर्फी भी कहते हैं, जो आप सर्फ में पढ़ चुके हैं। इश्तिकाक सगीर यह है कि दो लफ्जों में माना के अंदर भी मुनासिबत हो और लफ्जों में भी मुनासिबत हो। और लफ्जों में किस तरह मुनासिबत हो कि दोनों के हरूफ असलिया भी एक जैसे हों और उनकी तरतीब भी एक जैसी हो, या यूं कहें दोनों के हरूफ असलिया और उनकी तरतीब में इत्तेफाक हो। जैसे जरबुन से जराबा, यजरीबू और जारिबुन मुश्तक हैं भाई। जरबुन में भी पिटाई करने वाला माना, और जराबा यजरीबू जारिबुन के अंदर भी पिटाई करने वाला माना है। जरबुन के अंदर हुरूफ असलिया ज़ादराबा हैं, और इसी तरह जराबा यजरीबू और जारिबुन में भी हुरूफ असलिया ज़ादराबा हैं। और नीज जरबुन के अंदर हुरूफ असलिया की तरतीब भी वही है जो जराबा यजरीबू और जारिबुन में है, कि पहले ज़ाद है, फिर रा है और फिर बा है। तो यह है इश्तिकाक सगीर, कि दो लफ्जों के अंदर माना के अंदर भी मुनासिबत हो और लफ्जों के अंदर भी मुनासिबत हो, कि दोनों के हुरूफ असलिया और उनकी तरतीब में इत्तेफाक हो। जबकि एक है इश्तिकाक कबीर। इश्तिकाक कबीर यह है कि दो लफ्जों के अंदर माना के अंदर भी मुनासिबत हो और लफ्जों में भी मुनासिबत हो। लफ्जों में किस तरह मुनासिबत हो कि हुरूफ असलिया के अंदर इत्तेफाक हो, हां उसकी तरतीब में इत्तेफाक ना हो। जैसे जजाबा और जबाजा। जजाबा का माना भी खींचना और जबाजा का माना भी खींचना। और जजाबा के हुरूफ असलिया क्या? जीम, दाल और बा। और जबाजा के हुरूफ असलिया भी क्या? जीम, बा और दाल। तो हुरूफ असलिया में तो इत्तेफाक है, अलबत्ता इनकी तरतीब में इत्तेफाक नहीं है। जजाबा में जीम के बाद दाल है, जबकि जबाजा में जीम के बाद बा है भाई। तो यह क्या है? इश्तिकाक कबीर। और एक है इश्तिकाक अकबर भाई। इश्तिकाक अकबर यह है कि दो लफ्जों में माना के एतबार से भी मुनासिबत हो और लफ्जों के एतबार से भी मुनासिबत हो। लफ्जों के एतबार से मुनासिबत यह हो कि दोनों के कुछ हरूफ असलिया में इत्तेफाक हो, दोनों के बाज हरूफ असलिया में इत्तेफाक हो। जैसे फसलुन और फसमुन। फसलुन फा स्वाद लाम और फसमुन फा स्वाद मीम। तो फसलुन का माना भी जुदा करना और फसमुन का माना भी जुदा करना। तो देखो माना में मुनासिबत है और बाज हरूफ असलिया के अंदर भी इत्तेफाक है। फसलुन में फा स्वाद है, इसी तरह फसमुन में भी फा और स्वाद है, अगरचे लाम और मीम जो है वो अलग अलग हैं दोनों में। तो यह है इश्तिकाक अकबर भाई। तो ये इन तीनों में से एक भी नहीं है, क्योंकि चाहे इश्तिकाक सगीर हो, चाहे कबीर हो, चाहे अकबर हो, वहां जो मुनासिबत होती है वो माने हकीकी के एतबार से होती है। किस एतबार से? माने हकीकी के एतबार से। तो ये इसमें माने हकीकी के अंदर जो है मुनासिबत मुश्तक और मुश्तक मिनहू में माने हकीकी के अंदर मुनासिबत जरूरी है, जबकि यहां पर कलमुन और कलिमा और कलाम इनमें जो मुनासिबत है वो माने हकीकी नहीं बल्कि माने मजाजी के एतबार से है, क्योंकि कलमुन का माना जख्मी करना, माने हकीकी तो है जख्मी करना, और इसके साथ लाजिम क्या है, असर डालना। इसी तरह कलिमा और कलाम के साथ भी लाजिम क्या है, असर डालना। तो यह मुनासिबत किस माने में आई, माने हकीकी में आई या माने मजाजी में आई, माने मजाजी के एतबार से मुनासिबत आ रही है, यानी दलालत इल्तिजामी के एतबार से, माने हकीकी के एतबार से दोनों के माने में मुनासिबत नहीं है भाई। यानी यूं कहें आसान लफ्जों में, यहां सिर्फ मुनासिबत बयान की जा रही है भाई, और इस मुनासिबत को बाज़ उलमा ने इश्तिकाक के लफ्ज के साथ जिक्र फरमाया और बड़ी खूबसूरत मुनासिबत जिक्र की, लेकिन बहरहाल ये इश्तिकाक इस्तिलाही नहीं। चुनांचे बाज़ उलमा ने इसको फिर इश्तिकाक बईद का नाम दिया, कि इश्तिकाक तो है लेकिन बड़ा बईद इश्तिकाक है भाई, इश्तिकाक बईद। तो यहां नफ्स मुनासिबत जिक्र करना मकसूद था, और चूंकि ये इश्तिकाक इस्तिलाही नहीं है, इश्तिकाक तो कहा लेकिन इश्तिकाक इस्तिलाही नहीं है, इसीलिए साहिब जामी ने आगे देखो मतन में क्या कहा, अलकलिमतु कीला हिया वल कलामु मुश्तकानी, कीला के साथ जिक्र किया। मैंने बताया कीला सीगा तमरीज है, तमरीज मरज से है, मीम रा, और तमरीज का माना क्या है, कमजोर कलाम जिक्र करना, तो यह सीगा तमरीज है जिसके जरिए कमजोर कलाम को जिक्र किया जाता है। तर्जमा समझ में आ गया, तो यह शेर जुबानी याद करें भाई, जिराहातु सीनानी लहलती आमो वलायलतामो माजरहल लिसानो। चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।